हमने दो अध्याय कंप्लीट किए थे, तीसरे अध्याय से स्टार्ट करना था। बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर, इसके पहले के जो दो अध्याय थे, परफेक्शन ऑफ योगा एंड योगा एंड द मास्टर ऑफ योगा, योग और योगेश्वर और योग की पूर्णता, ये दो अध्याय हमने डिस्कस किए थे। और ऑलमोस्ट जो दूसरे अध्याय का लास्ट है, वहां से तीसरे अध्याय का फाउंडेशन चालू होता है। दूसरा अध्याय हमने एंड किया था कि कृष्ण भावनामृत वेदों का जो सबसे गुह्य ज्ञान है वो कृष्ण भक्ति है, और वासुदेव भगवान कृष्ण को जानना वेदों का सबसे संपूर्ण ज्ञान है, वो लास्ट था। इसके बाद अगला अध्याय जो है वो प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं कि वेदों में कुछ कुछ सेक्शन हैं, जो अगले अध्याय का जो टॉपिक है उसका थीम इस प्रकार से है कि वेदों में एक कांड, एक तो सेक्शन होता है प्रवृत्ति कांड, दूसरा होता है निवृत्ति कांड। तो प्रवृत्ति ऐसे लोगों के लिए है जो भौतिक संसार में रहना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन वेदों के द्वारा दिया जाता है। पर दूसरा जो है निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग मतलब जो इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। तो उस स्थिति में, चूंकि जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे जाना चाहते हैं, निवृत्ति मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। बिना अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित किए वो सोच भी नहीं सकते हैं कि भौतिक संसार के नियमों से कैसे बाहर निकलेंगे। इसलिए टॉपिक स्टार्ट होता है मन नियंत्रण से और इंद्रियों के नियंत्रण से। मन को शास्त्रों में डिस्क्राइब किया जाता है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को हम कंट्रोल करते हैं, उस तरह से मन को नियंत्रित किया जाता है। छोटे बच्चे को माँ कंट्रोल करती हैं, कभी उसको थप्पड़ मार देती हैं, कभी उसको इग्नोर करती हैं, और कभी उसको मतलब लालच देते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं मन को भी इसी तरह से नियंत्रित करना पड़ता है। प्रभुपाद जी बताते हैं मन को इग्नोर करना चाहिए, और कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि मन की सुबह और शाम पिटाई करनी चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि मन को नियंत्रित किए बिना योग पद्धति जो है वो अपने आप में एक क्या बोलते हैं, फार्स के जैसा है, धोखा के जैसा है। अगर कोई बोलता है कि आप कैसे भी अपनी इंद्रियों को एंजॉय करते रहिए और आप आध्यात्मिक जीवन में आगे जाएंगे, तो वो व्यक्ति मूर्ख बना रहा है। और चूंकि भगवान परमात्मा के रूप में है और हम ऑलरेडी इस संसार में अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए ही आए हैं, तो भगवान हमें पूरा परमिशन देते हैं कि इंद्रियों का भोग कैसे किया जाए। और भगवान में भोग करने की इच्छा है तो उनके पार्ट एंड पार्सल के कारण हमें भी भोग करने की इच्छा है। तो उस भोग की इच्छा को भगवान भी जानते हैं कि वो भोग की इच्छा एकाएक खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए वेदों में एक सेक्शन दिया जाता है जिसमें सिखाया जाता है कि कैसे भोग करें, परंतु रेगुलेटेड तरीके से करें, शास्त्र की विधि के आधार पर करें। शास्त्र की विधि के आधार पर जब हम भोग करते हैं तो वो भोग हमें धीरे धीरे शुद्धता की तरफ ले जाता है, और जब हम शुद्ध होते हैं तब फिर नेचुरली हम निवृत्ति मार्ग की तरफ चले जाते हैं और भगवत भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अभी कोई पूछ सकता है कि ये भौतिक भोग आता कहाँ से है, या भोग करने की इच्छा, अगर हम बोलते हैं सब कुछ आध्यात्मिक संसार से आता है तो भोग करने की इच्छा भी आध्यात्मिक संसार से आनी चाहिए। भगवद गीता में इसका उत्तर दिया जाता है। भगवद गीता का पहला अध्याय, पहला 15वें अध्याय का पहला श्लोक जो है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, ये भौतिक संसार है आध्यात्मिक संसार की उल्टी परछाई के जैसा है। तो ये भोग की इच्छा जो है ये वास्तविकता में सेवा की इच्छा से आ रहा है। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच का जो संबंध है, सेवा का और प्रेम का संबंध है, वो संबंध जब इस संसार में आता है तो वो भोग में बदल जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच का संबंध आदि रस कहलाता है, और आदि रस जब परवर्ट होता है तो वो इस भौतिक भोग में बदल जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, आगे भी लिखेंगे, कि भोग को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, भोग को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सेवा के रूप में। अभी हम अपने लिए कार्य करना चाहते हैं, और जब हम भगवत चेतना में आते हैं तो हम भगवान की सेवा में कार्य करना चाहते हैं। जैसे अगर हम भी कभी हम गार्डन में जा रहे हैं और गार्डन में हम देखते हैं कि कोई फूल है, तो सबसे पहले हमारी इच्छा होती है इस फूल को सूंघना चाहिए। परंतु जो भक्त होते हैं उनकी इच्छा सूंघने की नहीं होती है, वो बोलते हैं इस फूल को तो भगवान के चरणों में रखना चाहिए। तो ये अंतर है भोग और सेवा में। फूल को सूंघने की इच्छा भोग की इच्छा है, और फूल को भगवान के चरणों में ऑफर करना करने की इच्छा सेवा की इच्छा है। बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं। भक्त लोग जब प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया था, पहली बार दीक्षा दिया था, तो दीक्षा के बाद भी भक्त लोगों को इच्छा होती थी कुछ कुछ खाने की। गुरु पूजा के बाद भक्त लोग डोनट, वो चिक्की जैसा आता है, और कुकीज, ये सब उनको खाने की इच्छा रहती थी। तो गुरु पूजा के बाद भागते थे वो बगल की दुकान में न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद जी देखते थे कि मंदिर में तो बहुत कम बचे हैं, तो प्रभुपाद जी पीछे से ढूंढने जाते थे ये लोग कहाँ कहाँ गए। तो क्या होता था, प्रभुपाद जी वहां पे रेस्टोरेंट की विंडो में से देखते थे और ये लोग विंडो से नीचे छुप जाते थे, टेबल के नीचे घुस जाते थे कि अरे अभी कैसे उनके सामने कैसे खाएंगे, प्रभुपाद जी के सामने कैसे खाएंगे। खाने की इच्छा थी परंतु प्रभुपाद को भी दुखी करना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर बाद में चालू भी किया कि खुद गुलाब जामुन बना के रखते थे, बहुत सारी चीजें बना के रखते थे, बोलते थे जो खाना है यही खाओ। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा मटका जो था वो मंदिर के मेन हॉल के गेट पे टांग दिया था, तो जो बाहर जाता था सोचता था कि अभी भक्तों के संग में नहीं रहना है, बाहर चले जाएंगे, वो हॉल तक जाता था और रुक जाता था बड़े बड़े गुलाब जामुन देख के। एक गुलाब जामुन खाता था, दो खाता था, तीन चार खाता था, आके सो जाता था। तो उस समय उस गुलाब जामुन ने बहुत लोगों को भक्त बनाया, क्योंकि वो संडे फीस्ट इतना अच्छा होता था, 15-20 आइटम प्रभुपाद जी बनाते थे, संडे फीस्ट खा के लोग सो जाते थे, उठ ही नहीं पाते थे, और उसी संडे फीस्ट का वो सपना देखते थे अगले 2-3 दिन तक। और फिर बुधवार को जब जब होश में आते थे तो फिर 2-3 दिन गुलाब जामुन से निकालते थे खा खा के, एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8 गुलाब जामुन खाते थे, और फिर से संडे आ जाता था। तो ऐसा करते करते कई भक्त थे जो कि महीनों महीनों रुक गए, बाद में ब्रह्मचारी बन गए, बाद में संन्यास भी ले लिए। तो इसको बोला जाता है कि किस प्रकार से हमारी भोग की इच्छा को सेवा की इच्छा में बदला जाए। वो लोग भोग ही करना चाहते थे परंतु प्रभुपाद जी ने उनकी भोग को सेवा में बदल दिया, उनको भगवान का प्रसाद देके, जबकि उनको पता ही नहीं चला कि ये भोग और प्रसाद क्या अंतर है। वो लोग तो खाना समझ के खाते थे परंतु उस प्रसाद ने उनको शुद्ध कर दिया। इसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल चीटिंग। कोई आचार्य जब चीट करता है तो उसका चीटिंग भी दिव्य होता है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ही किया। जो मनुष्य की अपने इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, उस इंद्रिय भोग की इच्छा को उन्होंने भगवत सेवा की इच्छा में कन्वर्ट कर दिया, और भगवान को ऑफर करके जो भी हम स्वीकार करते हैं वो नेचुरली हमें प्योरीफाई करता है, क्योंकि भगवान मेन एंजॉयर हैं और हम उनके द्वारा एंजॉयड होने के लिए बने हैं, और उनको सेवा करके ही हमें प्रसन्नता मिलती है। इस संसार में सभी लोग एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पुरुष एंजॉयर है और प्रकृति एंजॉयमेंट करती है, मतलब मेल जो है वो एंजॉय करता है और फीमेल उसको एंजॉयमेंट देती है, परंतु अगर वास्तविकता में देखा जाए शास्त्र के आधार पे दोनों ही एंजॉय करते हैं। पुरुष स्त्री का जब संग होता है तो दोनों ही एंजॉय करते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि कोई किसी एक को कम एंजॉयमेंट होता है किसी को ज्यादा होता है, क्योंकि इस संसार में जो भी बद्धात्माएं आई हैं, जो भी जीव इस संसार में आए हैं, वो भोग करने के लिए आए हैं, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो, उनकी इच्छा सेम है, भोग करने की इच्छा है। तो उस इच्छा को बदलना, उस इच्छा को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। जब वो इच्छा ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो भोग की इच्छा सेवा की इच्छा में बदल जाती है। वही इसमें लिखा है जो हमने डिस्कस किया, वही इस अगले पैराग्राफ में लिखा भी है। प्रभुपाद जी प्रसादम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रसादम हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, भगवान के थ्रू लेते हैं, और ऐसा अगर हम करते रहते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। भगवान गीता में बताते हैं भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो लोग अपने लिए भोजन करते हैं भगवान को ऑफर नहीं करते हैं वो पाप खाते हैं, परंतु भक्त लोग जो है मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवान का प्रसाद लेके सभी पाप के कर्मों से दूर निकल जाते हैं। अभी कोई सोच सकता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, परंतु ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। हर व्यक्ति ने पाप किया है, इवन जब हम पानी पीते हैं तब भी पाप होता है, जब हम चलते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तब भी पाप होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स जब हम कुकिंग करते हैं तो वो खत्म होते हैं तो वो भी पाप होता है। तो इस संसार में नरक जाना बहुत आसान है क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कितने पाप कर रहे हैं, इसीलिए उस सबको पापों का फल खत्म करना करना आवश्यक है। अगर कोई, कई लोग ऐसे आपको भी मिले होंगे जो बोलते होंगे मैं तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, कभी कोई पाप नहीं किया, ये एक झूठा बात है। क्योंकि हमारा जीवन इस प्रकार से डिजाइन है कि पाप तो हम नेचुरली करते हैं, बिना चाहे भी पाप हो जाते हैं, इसलिए उन पापों को दूर करने के लिए भगवद गीता बताता है कि भगवान को समर्पण करना चाहिए। जब भोजन बनाते समय जो पाप होता है वो हम अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो वो पाप खत्म हो जाता है, इसलिए जो भोजन स्वीकार करते हैं भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद लेते हैं, बाकी लोग पाप को ग्रहण करते हैं। और जब जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसको, उसके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो अपने जीवन का विचार कर सकता है। एक बार जीवन चला जाता है, मृत्यु आ जाती है, तब फिर उस व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज आगे बताते भी हैं कि व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से निर्देश प्राप्त करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति से जाके निर्देश नहीं लेना चाहिए, जो व्यक्ति प्रामाणिक है उनसे निर्देश लेना चाहिए, और उसके निर्देश को पालन करके भोग की इच्छा को खत्म करना चाहिए। भोग की इच्छा इस संसार में अलग अलग तरीकों से आती है, कभी कभी भोग की इच्छा को यह भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल फील्ड में फेमस होना चाहता है, भोग की इच्छा को यह भी बोला जा सकता है कि कोई व्यक्ति सिनेमा एक्टर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति सोशल रिफॉर्मर बनना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, ये सभी भोग की इच्छाएं हैं, क्योंकि ये सभी शरीर से संबंधित इच्छाएं हैं, शरीर और मन से संबंधित इच्छाएं हैं, इसलिए सारी इच्छाएं भोग की इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं जब तक रहेंगी तब तक हम भक्ति में, एडवांस भक्ति में रह सकते हैं, परंतु तो एडवांस नहीं करेंगे, उसी जगह पे रहेंगे, क्योंकि ये इच्छाएं हमें भक्ति में एडवांस नहीं करने देंगे। भक्ति की इच्छा में कोई भी चीज का वो नहीं है, पॉलिटिकल, फिलेंथ्रोफिक, ह्यूमैनिटेरियन, कोई चीज का उसमें वो उसका कोई स्थान नहीं है। भक्ति वास्तविकता में इंडिपेंडेंट है, शुद्ध भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट आती है, और वही जो शुद्ध भक्ति जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तब वो सुखी बन सकता है। कई बार हम सोचते भी हैं कि इतने समय से माला कर रहे हैं सुख नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम इनमें से कुछ ना किसी चीज को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं। कई बार चार नियम जब हम पालन करते हैं तो हमारी ग्रॉस जो पाप की इच्छाएं हैं वो तो खत्म हो जाती है, परंतु सूक्ष्म इच्छाएं तब भी चलती रहती हैं। सूक्ष्म इच्छाओं में आता है नेम, फेम, ग्लोरी, सेम ओल्ड स्टोरी, हर व्यक्ति को इच्छा होता है कि मैं तो यूनिक हूं समहाउ, 84 लाख योनियों और 800 करोड़ लोगों में मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, हर व्यक्ति को ऐसी इच्छा होती है समहाउ। भले ही कोई हमें एक एक फीचर हमने देखा भी है, अगर हमें कोई समझाता है, बताता है कि देखो ये चीज कठिन है वो है, तो हमारे मन में से पहला विचार आता है कि अरे कठिन तो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये सब हम कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ये हमारे अंदर का अहंकार बोलता है कि हम इतने यूनिक हैं कि हर संसार में कोई चीज हमसे आगे है ही नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये नेचर के कारण हम मात खा जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम भक्ति आसानी से करेंगे और समाज में हम शांति से प्रोग्रेस करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस करेंगे, भौतिक जीवन में भी प्रोग्रेस करेंगे, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो दोनों चीजें एक साथ काम नहीं करती। इसलिए भक्ति करते समय हमें ये चीज तो भूल जानी चाहिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर आज मैं सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक चीज हमें समझना चाहिए कि हम इस संसार में कुछ ज्यादा आशा नहीं करें। भागवत में आता है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जब कोई व्यक्ति आशा नहीं करता है तो सुखी रहता है, जब कोई आशा करता है तो दुखी होता है। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भौतिक संसार में ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने से कुछ होगा नहीं। भौतिक संसार यही थर्ड क्लास संसार है। भौतिक संसार में कोई भी चीज अगर हमें मैटर के द्वारा सुख मिल रहा है, भौतिक पदार्थ के द्वारा अगर सुख मिल रहा है, या भौतिक वस्तुओं के द्वारा सुख मिल रहा है, दैट मीन्स उस सुख से दुख पैदा होगा।
तो ये कॉन्सेप्ट भक्त के जीवन में क्लियर होना चाहिए कि मैटर प्रोड्यूसेस मिजरी एंड स्पिरिट प्रोड्यूसेस ब्लिस। मैटर प्रोड्यूसेस मिजरी, स्पिरिट प्रोड्यूसेस ब्लिस। तो जब भी मैटर से कांटेक्ट होगा दुख मिलेगा, और जब भी आध्यात्मिक क्रिया होगा स्पिरिट से कांटेक्ट होगा तो सुख मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में लिख के रख देना चाहिए कि जब भी भोग की इच्छा हो ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं याद आएगा तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इस संसार में बहुत इच्छा रहेगी भोग करने की, कि संसार में हमें मिले कुछ, और जब तक वो रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं कि ये जो लड़के लड़के हमारे स्टूडेंट हैं अभी, ये लोग भौतिक जीवन में जाना नहीं चाहते, ये लोग गरीब नहीं है धनी घर के हैं। प्रभुपाद जी के कई शिष्य बहुत बड़े बड़े घर से थे, गिरिराज स्वामी महाराज जो थे उनके पिताजी इतने बड़े थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने चेक रख दिया था कि आप इसमें कितना भी अमाउंट भर दीजिए और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद के पास आके बोलते हैं कान में कि प्रभुपाद इसमें आप बहुत बड़ा अमाउंट भर दीजिए, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, पैसा मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने बोला कि प्रभुपाद अच्छा मौका है, अभी मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, परंतु आप चेक में बहुत बड़ी रकम लिख दीजिए तो इस्कॉन को रकम मिल जाएगी। प्रभुपाद ने बोला नहीं 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 इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने उनके पिताजी से बात किया, उनको समझाया भी। उनके पिताजी ने जाते जाते बोला कि आपके जो गुरु हैं बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, इस तरह से प्रसन्न होके गए थे। तो प्रभुपाद के शिष्य कोई गरीब परिवार से नहीं आए थे, उनके पास कोई भौतिक भोग नहीं हो या खाने का खाने के लिए खाना नहीं हो ऐसा नहीं था, परंतु वो भोग से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भारत के लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि भारत में गरीबी छाई रहती है, पाश्चात्य देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा शायद लोगों को लगता है कि भारत अभी भी वही सपेरों का देश है और भिखारियों का देश है। तो बाहर उस तरह से लोग सोचते हैं कि उनके पास ये नहीं है इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, वो भारत को जस्टिफाई कर सकते हैं, परंतु अमेरिका के लोग क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, अमेरिका में क्यों इतना सुसाइड हो रहा है, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है? उनके पास तो कुछ नहीं, उनके पास तो कोई समस्या नहीं है, खूब पैसा है। बहुत कई देश ऐसे हैं जहां पे गरीब रहना कठिन है। कौन सा तो देश था, प्रभुपा जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि वहां के लोग बोलते हैं कि हमारे देश में तो गरीब रहना मुश्किल है, कोई व्यक्ति को गरीब रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे भी देश है, परंतु ऐसे जगह पे भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वहां पे भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये प्रूफ है कि भौतिक संसार का जो जीवन है वो हमें सुख सुख प्रदान नहीं कर सकता, और सुख तभी मिल सकता है जब हम श्रीमद् भागवत में आते हैं और श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन की प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना हमारा भौतिक भोग से रुचि कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। भौतिक भोग से रुचि कम होना कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने का एक अच्छा अच्छा साइन है, अच्छा सिम्टम है। जैसे भौतिक संसार, आगे पे उपाजी लिख रहे हैं, भौतिक संसार में जो हैं उनको दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, सोना और अपोजिट सेक्स के साथ संबंध करना और पैसा। तो हिरण्यकश्यपु जो था वो इन दोनों चीजों का कल्मिनेशन था। हिरण्य का मतलब गोल्ड, कश्यपु मतलब सॉफ्ट बेड। और भौतिक संसार में भी सभी लोग इसी से डूबते रहते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से लेके आप देखेंगे चींटी भी, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से चींटी तक हर आदमी यही काम कर रहा है, भोग की चीजों से में है, परंतु कोई संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा हमें संतुष्ट करेगा, कुछ लोग बोलते हैं अपोजिट सेक्स से संबंध हमें संतुष्ट करेगा, परंतु संतुष्ट कोई दिखता नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड ही दिखते हैं। अगर ये सब चीजें संतुष्ट करती होती हैं तो अभी तो संसार एकदम एकदम स्वर्ग जैसा बन गया होता, परंतु ऐसे संसार में भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसे संसार में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं और साइकेट्रिक पेशेंट हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कृष्ण भक्ति के अलावा हमें कोई भी चीज प्रसाद खुशी दे सकती है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है। अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है दैट मीन्स वो गलती कर रहा है। तो आगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इस गलती को सुधार के हमें वैदिक सिद्धांत, मतलब सबसे पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और कहाँ से आया हूँ, और मेरा लक्ष्य क्या है, क्यों मुझे इस संसार में दुख मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न पूछा गया था सनातन गोस्वामी के द्वारा। जब हम ऐसा प्रश्न करेंगे तब फिर श्रीमद् भागवत हमें उत्तर प्रदान करेगा कि भगवान विष्णु के शरण में जाना ही हमारे जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। वो श्लोक जो भागवत में आता है, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया रे बहिरथ मानिना, उस श्लोक का यही मीनिंग आता है कि जब तक हम उस भगवान विष्णु जो हमारा वास्तविक स्वार्थ, एक्चुअली स्वार्थ कोई गलत शब्द नहीं है, स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ, स्व अर्थ मतलब हमारे लिए जो अच्छा है, परंतु लोगों को पता ही नहीं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, इसलिए वो स्वार्थ गलत माना जाता है कि वो किसी भी चीज के पीछे भागते हैं, हमारे लिए अच्छा अच्छा सोच सोच के वो किसी भी चीज के पीछे भागते हैं, कृष्ण के पीछे नहीं भागते। तो ये उस चैप्टर में बताया गया है कि लॉ ऑफ नेचर से अगर हमें निकलना है तो मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी, जिंदगी का गोल और आध्यात्मिक प्रैक्टिस प्रॉपरली करना होगा, तब हम जो प्रकृति के नियम है उनको तोड़ के हम स्वतंत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है योग का उद्देश्य। जैसा कि योग शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, योग का मतलब होता है लिंकिंग, एडिशन। तो लिंक करने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो जब भी योग शब्द आता है दैट मीन्स आत्मा और भगवान के बीच का संबंध की बात आती है। योग का मतलब जिम्नास्टिक जैसा नहीं होता है। संस्कृत शब्द योग का मीनिंग है कि ऐसी प्रोसेस जिससे आत्मा और भगवान का संबंध स्थापित होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये चैप्टर चालू किया माम शब्द के डिस्क्रिप्शन से। ये इसलिए चालू किया क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों को एक कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन होता है कि भगवान का शरीर है ही नहीं, भगवान कोई पर्सनालिटी नहीं है, भगवान तो एक निराकार है, उसी निराकार में से अलग अलग अवतार होते रहते हैं और फाइनली सभी उस निराकार में मिल जाते हैं। लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए भगवद गीता में जहां भी माम शब्द आता है तो ऐसे लोग ट्रांसलेट कर देते हैं कृष्ण के अंदर कोई है ब्रह्म वो बोल रहा है, जबकि संस्कृत के एज इट इज मीनिंग को देखेंगे माम मतलब मुझे। अगर मैं बोलूं कि मुझे पानी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आपको पानी नहीं चाहिए, आपके अंदर कोई और है जो पानी चाहिए है, आप तो केवल वही है। ये तो एक यूजलेस चीज है बोलना, मुझे पानी चाहिए मतलब मुझे पानी दीजिए। और जहां तक अगर कोई बोले भगवान का शरीर और आत्मा अलग है तो उसके लिए उपनिषद में आता है देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, भगवान में ईश्वर में देह और देही शरीर और आत्मा इनमें कोई अंतर नहीं होता है। भगवान के केस में देह और देही का कोई डिफरेंस नहीं होता है, देह और देही दोनों समान होते हैं भगवान के केस में। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए, उसका मतलब भगवान के लिए। तो जिसने भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप कर लिया है वो कृष्ण भक्त है, और जब हम अगर भगवान से अटैचमेंट डेवलप हो जाता है तो नेचुरली हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को कि भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस संसार में भी प्रेम का लक्षण होता है उस व्यक्ति के बारे में सोचना और सेवा करना। जैसे किसी के घर में अगर नया नए बच्चे का जन्म होता है तो पिताजी ऑफिस में जाते हैं, उस बच्चे की फोटो खींच के जाते हैं, या बच्चे की माँ उनको हमेशा फोटो भेजती रहती है, तो वो प्रेम होता है। हम अपना काम करते रहेंगे परंतु उसके बारे में याद करते रहेंगे जिसको हम प्रेम करते हैं। जैसे मैंने भी देखा प्रैक्टिकली, मेरे जो भाई का, मेरे बड़े भाई हैं उनका पुत्र हुआ है तो वो फोटो भेजते रहते हैं, भाभी भी कई बार फोटो भेजती रहती हैं। तो वो नेचुरल है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, बार बार उसको देखने की इच्छा होती है। जैसे प्रभुपा जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई स्त्री का दूसरा पति के अलावा दूसरा कोई लवर है तो हमेशा वो अपने घर घर के काम अच्छे से करती है कि पति को शक नहीं हो जाए, पर अंदर ही अंदर सोचती रहती है कि मैं कब अपने लवर से मिलूंगी। तो लव प्रेम में हमेशा ऐसा होता है कि हम उनके बारे में सोचते हैं। तो अगर हम भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप करेंगे तो फिर नेचुरली हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे, और साथ साथ फाइट करने के लिए भगवान अर्जुन से बता रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध चा। तो भगवान अर्जुन को दोनों टास्क दे रहे हैं, आप मुझे याद करो साथ साथ फाइट भी करो। अभी ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि फाइट करते समय कोई व्यक्ति लगातार ही सोचता रहेगा, बहुत कठिन है। परंतु अगर अर्जुन के केस में अर्जुन क्या कर रहे थे, भगवान के लिए ही वो कार्य कर रहे थे, भगवान के द्वारा रिकमेंडेड कार्य कर रहे थे, तो अर्जुन के लिए जो फाइटिंग था वो भी भगवान की सेवा थी, फाइटिंग सेवा से अलग नहीं थी। तो भगवान वही बता रहे हैं कि आपको फाइट करना है, आप फाइटिंग से दूर नहीं हो सकते हैं, और तो आप मुझे याद करते हुए फाइट करिए, मेरे लिए कार्य करिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि नाउ डेज आई हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट द ड्राफ्ट बोर्ड ऑफ योर कंट्री इज कॉलिंग फॉर बॉयज टू ज्वाइन द आर्मी, बट दे आर नॉट विलिंग, दे आर नॉट विलिंग बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड एट क्षत्रियज वॉरियर्स। ये उस समय की बात है जब वियतनाम वार चल रही थी अमेरिका में, और अमेरिका के ये जवान लोगों को भेजा जा रहा था। तो प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं कि लोग अलग अलग बहाने बना रहे थे, क्योंकि वो लोग क्षत्रिय जैसे ट्रेंड नहीं हुए हैं, शूद्र के जैसे ट्रेंड हुए हैं, तो किस प्रकार से वो करेंगे। और पहले के समय में ऐसा था कि लोगों को ट्रेनिंग अलग अलग दी जाती थी, कुछ लोग शास्त्र सीखते थे, कुछ लोग युद्ध सीखते थे। अभी क्या है, सभी को एक ही चक्की में झोंक दिया जाता है। आपका जन्म हुआ और जन्म के समय ही आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, और फिर उसको चालू कर देते हैं, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, और ये करो वो करो, ओलंपियाड में फर्स्ट आना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, सब उसका बचपन से ही सब फिक्स हो जाता है, सारा भाग्य सब फिक्स हो जाता है। तो ये स्टडी एक्चुअली लेबर एजुकेशन है, क्योंकि व्यक्ति उसका इंटरेस्ट ही नहीं उस जगह पे, और उसको आप जबरदस्ती उस जगह पे भेज देते हैं। तो ये यूजलेस एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन जो है वो यूजलेस है, क्योंकि उसमें व्यक्ति के टैलेंट का ही पता नहीं चलता है। जैसे बोलते हैं हमारे तो घर में सभी डॉक्टर हैं तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, हमारे घर में सब इंजीनियर हैं तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना पड़ेगा, या एक अलग मिसकंसेप्शन है। तो वर्णाश्रम एजुकेशन नहीं होने के कारण लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है। वैदिक एजुकेशन में गुरु के द्वारा चेक किया जाता था कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। अगर इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो फिर समाज में हम थोड़ा आध्यात्मिक आध्यात्मिक सिविलाइजेशन ला सकते हैं। तो उपाध्याय जी पूरे अगले 2-3 तात्पर्य में वही डिस्कस कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम, वर्णाश्रम किस प्रकार से भगवान ने डिजाइन किया है, उसको कंपेयर करते हैं कि ब्राह्मण जो है वो उसके सिर के समान है, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं के समान है, वैश्य जो है वो पेट के समान है, और शूद्र पैर के समान है। तो जिस प्रकार से एक शरीर में सभी अंगों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से मानव के इन सभी आश्रमों की, सभी वर्णों की अपनी अपनी आवश्यकता है। कभी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पैर कम इम्पोर्टेंट है तो पैर को खत्म कर दो, सिर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि सिर ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर से दिमाग होता है, परंतु पैर को खत्म करने के बाद भी बॉडी नहीं चल सकती है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण का अपना इम्पोर्टेंस है, क्षत्रिय का अपना इम्पोर्टेंस है। जब सोसाइटी बहुत ज्यादा शारीरिक चेतना में आ जाती है तब ये सब लड़ाइयां प्रारंभ होती हैं कि ब्राह्मण बोलता है मैं क्षत्रिय से ऊपर हूँ, क्षत्रिय बोलता है मैं राज्य कर रहा हूँ, तब लड़ाइयां चालू होती हैं। परंतु अगर सभी का एक गोल है भगवान को संतुष्ट करना, तो कभी लड़ाई नहीं होती। हर व्यक्ति अपना अपना रोल करता है और अपने अपने तरीके से भगवान को संतुष्ट करता है। ब्राह्मण गाइड करते हैं, क्षत्रिय राज्य करते हैं, वैश्य प्रजा वो गाय का पालन और व्यापार करते हैं, और शूद्र उनके सभी की सेवा करते हैं। तो समाज हारमोनी से चलता है। तो अननेसेसरी जब समाज समाज में अननेसेसरी जब समाज के अंदर बॉडी चेतना को बढ़ाया जाता है, तब ये समस्याएं आती हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक पतन होता है समाज का। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आई से दिस फ्रेंकली, एवरीवन मे रीड इट, एनी सोसाइटी वेयर देयर आर नो स्पिरिचुअल पर्संस इज अ रास्कल सोसाइटी बिकॉज इट हैज नो हेड। ब्राह्मण जो है वो सोसाइटी के हेड हैं। अभी क्या है, हेड को ही काट दिया गया, ब्राह्मण कोई बचे नहीं है। तो हेड को अगर काट देंगे तो फिर शरीर बचेगा नहीं, इसलिए पूरा समाज स्पिरिचुअली डेड हो चुका है, आध्यात्मिक रूप से पूरा समाज मर चुका है। प्रभुपाद जी बताते थे कि इस्कॉन के द्वारा हम ब्राह्मणों की स्थापना करना चाहते हैं, और जब तक इस्कॉन नहीं होगा तो या तो ये समाज पागलों का समाज है या ये मरे लोगों का समाज है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वी आर नॉट मेंट टू मैन्युफैक्चर। एक एक प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कहीं पे, हाँ इसमें लिखा है, द अदर डे व्हेन आई, जब मैं आपके देश में आया था तो मैं जापान के सेक्रेटरी से मिला, मैंने उनको समझाना चाहा कि उनको हमारी संस्था के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी आध्यात्मिक संस्था, किसी भी धार्मिक संस्था के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बताए वो इतनी ऊंची पोस्ट पर परंतु इतना मूर्ख है, उसको लगता है कि ये जो संस्था है ये धार्मिक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मानसिक धर्म है, मानसिक धर्म जो लोग अपने मन से करते हैं, उसी प्रकार से उसको लगता है कि कृष्ण भक्ति भी मानसिक धर्म है। पर वास्तविकता में ये सेक्टेरियन रिलीजन नहीं है। ये जिस प्रकार से सूर्य पूरे संसार में एक होता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण पूरे संसार के लिए भगवान है। सूरज में अंतर नहीं होता है कि सूरज भारत का सूरज अलग है, जर्मनी का सूरज अलग है, अमेरिका का सूरज अलग है। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी समान है, सभी सभी जगह समान है, सभी के भगवान है वो। और जो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन को नहीं मानता है, उनकी सोसाइटी को बोला जाता है बंदरों की या शेर की सोसाइटी, जानवरों की सोसाइटी बोला जाता है, वो मनुष्य समाज नहीं हो सकता है। और प्रभुपाद बताते हैं डेमोक्रेसी एक इसी प्रकार की चीज है, क्योंकि डेमोक्रेसी बोलते हैं कि जो जनता है उसी में से लोगों को चुनना है। तो प्रभुपाद बताते हैं अगर जनता में बहुत सारे कुत्ते हैं तो जो चुना जाएगा वो भी कुत्ता होगा, भले वो लीडर होगा परंतु कुत्तों का लीडर होगा। तो कुत्तों के लीडर में किसी और को नहीं बिठाया जाएगा, कुत्ते को ही बिठाया जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी एक काम चलाऊ चीज है, डेमोक्रेसी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे संसार में 36 राजा नहीं बचे इसलिए डेमोक्रेसी के आधार पर काम चल रहा है, नहीं तो डेमोक्रेसी की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भगवान कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को डेवलप करते हैं, उनका उनका जीवन धीरे धीरे प्योर होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब मैं वेस्ट आया था, आने के पहले यहाँ पे कोई ऐसा आंदोलन नहीं था, परंतु अभी ये डेवलप हो रहा है। भगवान कृष्ण तो आपके देश में जन्म नहीं लिए थे, और कृष्ण को तो आप भगवान भी नहीं मानते हैं, परंतु भगवान इतने आकर्षक हैं कि यद्यपि आप पाश्चात्य देश के हैं परंतु भगवान कृष्ण ने आपको आकर्षित कर लिया। भगवान कृष्ण आपके लिए फॉरेनर नहीं है। हम सो भगवान को अपने से दूर निकालते हैं, परंतु भगवान के लिए हम सभी उनके पुत्र के समान हैं, उनके अंश के समान हैं। इसलिए भगवद गीता बताता है कि सब कुछ भगवान को समर्पित है और भगवान को सभी का मालिक समझना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान सभी के मालिक हैं। ये जो देश की जमीनें बनाई हैं या देश की बाउंड्री बनाई है, LOC LAC, ये सब जो बनाया है ये सब हमने बनाया है। भगवान ने पूरी धरती दी थी, उसको हमने डिवाइड करके अपने अपने देश बना लिए। वास्तविक जो समाज का कॉन्सेप्ट है वो समाज का कॉन्सेप्ट है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। सब कुछ संसार जो है वो भगवान के द्वारा चलित है और भगवान उसको मेंटेन करते हैं, और जिसको जितना कोटा है उसको उतना कोटा यूज करना चाहिए। पर अभी वो देश लड़ाई करते हैं, रसिया चाइना की लड़ाई होती है और कम्युनिज्म की बात करते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह पे बताते हैं कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही बेसलेस है, क्योंकि कम्युनिस्ट सब चीज इकट्ठा बांट के सब सबको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं मिलता है, खुद छूट जाते हैं वो, इसलिए वो जिसको नहीं मिलता है वो सोचता है कि बाकी लोगों के पास भी नहीं होना चाहिए। और कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि हम पैसा कमाएंगे और लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसलिए इन दोनों पक्षों में हमेशा लड़ाई चलता रहता है। कहीं भी हम देखेंगे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के बीच में लड़ाई चलता है। इवन एक देश की पार्टियों में भी ऐसा होता है, जैसे अमेरिका में हमने देखा ट्रंप का एक अलग पक्ष था, जो बाइडेन का एक अलग पक्ष है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये दो हमेशा फाइट करते रहते हैं, कभी कैपिटलिस्ट हावी होते हैं कभी कम्युनिस्ट हावी होते हैं। प्रभुपाद जी ने एक कन्वर्सेशन में बोला था कि कम्युनिज्म धीरे धीरे आगे हावी होता रहेगा, परंतु कृष्ण भक्ति जैसे ऐसे प्रचार होगा तो हम स्पिरिचुअल कम्युनिज्म लोगों को सिखाएंगे। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म मतलब सब कुछ भगवान का है। कम्युनिज्म में सिखाते हैं कि सब कुछ स्टेट का है, तो कृष्ण भक्ति में हम सिखाते हैं सब कुछ भगवान का है और जिसका जितना शेयर है उसको उतना लेना चाहिए। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब इस प्रकार से कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों से हटके हम स्पिरिचुअल कम्युनिज्म को डिस्कस करें। और स्पिरिचुअल कम्युनिज्म का जो कोर है भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति जो है वो उसका कोर है। और उसके आगे फिर डिस्कस होता है, जस्ट जस्ट अ मिनट, उसके आगे भगवान तो भगवान डिस्कस करते हैं। भगवान की भगवत्ता का डिस्क्रिप्शन चल रहा है जिसमें कि भगवान डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्ण भगवत्ता जो है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। विघटित मतलब डिवाइडेड नहीं होती है। डिवाइडेड जैसे आगे प्रभुपाद जी उदाहरण देते होंगे कि जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को मिलाते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी बनता है। इसी तरह से भगवान में से कितने भी जीव निकले, कितने भी ब्रह्मांड निकले, परंतु भगवान पूर्ण शक्तिशाली है, वो हमेशा पूर्ण शक्तिशाली रहते हैं। और भगवान और हमारा स्वभाव समान है, भगवान का जो नेचर है उसी तरह से हमारा भी नेचर है, भगवान से कुछ अलग नहीं है। भगवद गीता इन सब चीजों को समझाता भी है। जैसे कहाँ पे एक जगह पे आता है, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्ववस्थिता। भगवद गीता में डिस्कस होता है कि 9वें अध्याय में आता है शायद, कि हर सब पूरा संसार व्याप्त है मेरे इम्पर्सनल रूप में, परंतु मैं उससे अलग हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। तो भौतिक संसार में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पेपर ले और पेपर को फाड़ दे, फाड़ता जाए तो पेपर खत्म हो जाए, परंतु आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि कृष्ण में से जीव निकलते गए तो कृष्ण खत्म हो गए। ये एक मायावाद का कॉन्सेप्ट है जो कि भागवत के द्वारा सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से भौतिक तरीके से भौतिक जो वस्तुएं हैं वो आध्यात्मिकता में काम नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में 1 माइनस 1 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 भी 1 होता है। और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते भी हैं कि कृष्णा प्लस, नहीं मैं भूल गया उसको, प्रभुपाद जी का एक कोटेशन है इससे रिलेटेड। तो आगे बता रहे हैं कि जो भी कृष्ण को जानता है, कृष्ण के विज्ञान को जानता है, वो फिर अपनी चीजों में परफेक्ट रहता है। और इसके आगे फिर इस चैप्टर की थीम जो है उसमें डिस्कस किया जा रहा है कि योग का उद्देश्य क्या है, योग का जो गोल है वो योग का गोल है कि किस प्रकार से भगवान के व्यक्तित्व को पूरे संसार में समझा जाए। हाउ टू कॉन्टेक्ट कृष्णा एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर इन एवरीथिंग, हर जगह भगवान उपस्थित हैं परंतु कैसे उनको समझा जाए, ये वास्तविकता में योग का लक्ष्य है। और कृष्ण भक्ति का भी यही लक्ष्य है। कोई अगर योगी आए तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी जो कृष्ण भक्ति है वो सबसे ऊंचा योगा है, हमें अपने शरीर को बहुत लंबी लंबी तपस्या नहीं करनी है, तालाब में जाके, जम पानी के अंदर जाके, गर्मी में जाके, पहाड़ के ऊपर जाके तपस्या नहीं करनी है, हमें हमारी भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है और सबसे ऊंचा योगा सिस्टम है, बाकी सबसे बहुत ऊंचा है। कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सबके से वो बहुत ऊपर आता है और साथ साथ बहुत आसान भी है, प्रैक्टिकल। इसलिए गीता में आता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, ये करने में भी बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है, करते समय भी बहुत प्रैक्टिकल होता है। जैसे प्रसाद देख के कौन खुश नहीं होता है, प्रसाद देख के सभी लोग खुश होते हैं। इसी तरह से कीर्तन में, डांस करने में सभी खुश होते हैं। छोटा बच्चा के सामने भी अगर डांस होता है तो उछलने लगता है, भले ही वो उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है परंतु डांस में उछलने लगता है। तो इस प्रकार से भक्ति होती है, जबकि आध्यात्मिक जीवन में उस प्रकार से आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। और अगर कोई दूसरी योग पद्धति हम स्वीकार करें तो यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करने में ही व्यक्ति को सालों सालों निकल जाते हैं, कई जन्म निकल जाते हैं, जबकि कृष्ण भक्ति इतनी इतनी फास्ट है कि जो कई कई जन्मों से प्राप्त होता है वो हम कुछ एक एक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। भगवत धाम जाना एक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप अष्टांग योगी से अगर बात करिए, बोलता है कि एक जीवन में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग बहुत लंबी पद्धति है, कलयुग के हिसाब से एक जीवन में नहीं हो सकता है। जबकि भक्ति योगी कुछ दशकों में भी इस तरह से कर सकते हैं। हमने देखा है हमारे सामने इस तरह से भक्त परफेक्ट हुए, प्रभुपाद जी के शिष्य जो कि भगवत धाम जा रहे हैं, चले गए हैं, अपना जीवन सफल किए प्रभुपाद जी की सेवा की कुछ दशकों तक, 40 साल 50 साल, उसके बाद भगवत धाम चले गए। तो भक्ति योग की प्रोसेस की शक्ति इतनी है कि वो व्यक्ति को पूरी तरह से क्वालिफाई बना सकता है, बाकी प्रोसेस में इतना शक्ति नहीं है। और भक्ति योग बहुत प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब जैसे प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में बात कर रहे थे, एक भक्त ने बोला कि आप लोग क्या प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो बुक सेल करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दिन भर फिजिकल कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला यही तो एक्चुअल कार्य है, आत्मा का यही कार्य है, भगवत धाम जब हम जाएंगे तब भी हम यही कार्य करेंगे, परंतु अभी जो है हम भूल गए हैं, तो जब याददाश्त चली गई तब हम दूसरे प्रकार के कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं कि मैं तो 72 साल का व्यक्ति हूँ, जब मैं बीमार था तो मैं भारत चला गया था वापस, परंतु मैं काम करना चाहता हूँ, मैं इन सब कामों से रिटायर हो सकता था परंतु तब भी मैं कार्य करना चाहता हूँ, मैं दिन रात काम करना चाहता हूँ, रात में मैं अपने डिक्टाफोन को यूज करता हूँ और जब मैं काम नहीं कर पाता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्ष्य होता है, वो कभी भी शांति से बैठ के सोना नहीं चाहता है कि समय मिला और हम सो गए, बिस्तर को ढूंढ के सोने की इच्छा करते। कृष्ण भावना अमृत की सोसाइटी आइडल नहीं है, आलसी लोगों की सोसाइटी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारी संस्था में आलसी लोगों की कोई जगह नहीं है, हमारे पास इतने एंगेजमेंट होते हैं कि भक्तों के पास टाइम नहीं होता है, भक्तों से पूछो कि आप ये कर लो, बोलते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है, इतनी सेवाएं होती हैं, इतना डायनेमिक है। तो और इतनी सेवा में जो भक्त लगे रहते हैं उनका प्रोग्रेस होता रहता है, एक दिन अपना शरीर त्याग करते हैं, जब देखते हैं तो भगवान सामने खड़े रहते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो कितना आसान है, पूरा जिंदगी सोलह माला करिए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, सेवा करिए, और जब मृत्यु होगी तो पता ही नहीं चलेगा कब मृत्यु हुआ, कब भगवान धाम चले गए, जबकि वही चीज दूसरे योग पद्धति में करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, और भगवत धाम पहुंच भी नहीं पाते हैं, कभी निराकार ब्रह्म में चले जाते हैं, कभी यहाँ वहां चले जाते हैं, तो उनको वो डेस्टिनेशन भी नहीं मिल पाता है, जबकि भगवत चेतना या कृष्ण भक्ति से कितना आसान हो जाता है। तो ये योग सिस्टम जो है ये इसका फाइनल गोल है, बाकी जो योग पद्धति है वो योग पद्धति इतनी कुछ स्ट्रांग नहीं है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है काम करे, बहुत कम लोग जो कि पिछले जन्मों से करते आ रहे हैं उनके लिए हो सकता है काम करे, परंतु शास्त्र उसको कलयुग के लिए अलाउ नहीं करता है। इसलिए योग का मतलब होता है, योग का एक और मतलब होता है कि ये पूछना, जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को भी योग बोला जाता है कि मैं कौन हूं और अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं, ये भी एक योग की पद्धति, योग की जिज्ञासा बोला जाता है, क्योंकि इस जिज्ञासा के बाद ही व्यक्ति का प्रोग्रेस चालू होता है, जब वो उसको ऐसे प्रश्न आते हैं तभी उसका प्रोग्रेस चालू होता है, तब वो जीवन की समस्याओं को देखना प्रारंभ करता है और उन समस्याओं को दोहराना रोकने के लिए वो आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करता है। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से मैं अभी तक भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अमेरिका मैंने 1967 में छोड़ा था, जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तब मैंने सोचा था कि मुझे वृंदावन वापस जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ पे कृष्ण भक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, और मैंने सोचा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु अगर आप कहीं भी हैं और कृष्ण भक्ति में स्ट्रांग हैं तो आप कहीं भी वृंदावन का फीलिंग प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन एक कोई स्थान का नाम नहीं है, वृंदावन वो जगह है जहाँ पे भगवान और उनके भक्त निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं बाद में फिर वापस आया और अमेरिका के ये जो मेरे मंदिर हैं ये भी वृंदावन के समान है, जहाँ भी मेरे भक्त वास करते हैं, भगवान के भक्त वास करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा होती है, वो वृंदावन के समान है, तो चाहे मैं कहीं भी शरीर त्याग करूं वो वृंदावन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे संसार में वृंदावन को क्रिएट करें, संसार में अलग अलग जगह पर वृंदावन की स्थापना करें, तो हमें इस योग भक्ति योग की प्रोसेस को अप्रिसिएट करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, एसिमिलेट करना पड़ेगा। एप्रिसिएट मतलब उसको पसंद करना होगा कि ये कितनी अच्छी है, और ग्रेटफुल होना होगा, और साथ साथ उसको सीखना पड़ेगा और जीवन में अप्लाई करना होगा। इतना कार्य करेंगे तो फिर नेचुरली हम प्रचार करेंगे, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रचार करेंगे, जैसे कोई घड़े में अगर पानी डालें तो जब पानी भर जाता है तो अपने आप बाहर निकलता है, इसी तरह से अगर हमारी कृष्ण भावनावृत की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अपने आप हम लोगों को देख के उनको बताएंगे, और वो भी लोग भी भक्त बनेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा प्रचार जो है वो हमारे बिहेवियर से होता है, जैसे अगर हम किसी से बोलें हम खुद ही भक्ति में संतुष्ट नहीं है या अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो हम किसी से जाके बोलेंगे कि प्रभु जी आप भी माला करिए, आप भी ऐसा करिए, वो हमारे फेस देख के सोचेगा कि अरे अगर माला करेंगे तो ऐसे ही हालत हो जाएगी जैसे इस व्यक्ति की हालत, तो वो सोचेगा अरे इससे अच्छा तो अभी हैं हम। तो सबसे अच्छा प्रचार होता है हमें देख के, जो व्यक्ति अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो हमें देख के व्यक्ति प्रचार भक्ति को स्वीकार करता है, वो सोचता है कि ये व्यक्ति इतना खुश है, इतना सेटिस्फाइड है, तो अगर मैं भी करूंगा तो मुझे भी मिलेगा। इसलिए कई बार जब भक्त पूछते हैं ना कि ये लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, माया का इतना प्रकोप बढ़ गया है, उसका नॉर्मल आंसर होता है कि एक्चुअली हम अपने अंदर प्योरिटी डेवलप करने के लिए उतने सीरियस नहीं है। अगर हम अपने अंदर प्योरिटी डेवलप करेंगे तो वो प्योरिटी जो है वो लोगों को आकर्षित करती है। प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को आकर्षित किया, हजारों हजारों अमेरिकन लोगों को आकर्षित किया है जिनका वैदिक संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था, केवल अपनी प्योरिटी के कारण। तो अगर हर इस्कॉन भक्त अपने आध्यात्मिक प्योरिटी पर कार्य करेगा तो इस्कॉन संस्था को पूरी दुनिया को टेक ओवर करने से कोई रोक नहीं सकता, इतनी शक्ति है हमारी फिलॉसफी के अंदर। अगर उस फिलॉसफी को व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिस किया जाए अच्छे से तो कोई भी व्यक्ति, जैसे एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त में पूरे ब्रह्मांड को डिलीवर करने की शक्ति है। तो फिलॉसफी में इतनी शक्ति है, अगर प्रैक्टिशनर उस फिलॉसफी को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो तो एक एक भक्त जो है वो पूरी दुनिया में जा जाके प्रचार कर सकते हैं, हजारों की संख्या में भक्त बना सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना प्रभुपाद के मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स जो है ये दो अध्यायों में लिखे हैं। एक्चुअली इस किताब के चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि दो अध्याय कंप्लीट करने में 1 घंटे निकल जाते हैं। बहुत कठिन है कंप्लीट करना, इसके चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे हैं। देखने में पुस्तक छोटी है परंतु एक एक चैप्टर्स लंबे हैं। मैं सोचा था कि आज 3 या 4 चैप्टर करूंगा बट 1 घंटे निकल गया ऑलमोस्ट, केवल 2 चैप्टर में 1 घंटे निकल गए। ऐसा लगता है इसी वीक में हमें 1 दिन और करना होगा, 1 हफ्ते में 2 क्लास करना होगा तब इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मैं फास्ट भागना भी नहीं चाहता हूँ कि चैप्टर कैसे भी करके खत्म कर दो, वो भी एक ठीक नहीं है क्योंकि उसमें मैसेज क्लियर नहीं होता है। तो अगले 2-3 दिन के बीच में कोई 1 दिन निकाल के हम फिर से क्लास कर सकते हैं जिससे कि ये कंप्लीट हो सके। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु,
थैंक यू प्रभु जी। यस वेरी गुड प्रभु जी, इट वॉज क्वाइट गुड। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभुपाद में एक जगह लिखा हुआ है, आई थिंक वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा है शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा चैप्टर में था। प्रभुपाद ने लिखा है कि जो ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें मतलब एक ब्रह्मांड में केवल एक ही सन है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक एक सन है। हर एक यूनिवर्सिटीज में ये मल्टीपल सन नहीं है, जैसे हम लोग जो सोचते हैं ये जो स्टार्स हैं ये सारे सन हैं, दे ऑल द स्टार्स आर सन। जो साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सारे स्टार्स सन हैं, परंतु प्रभुपाद ने बोला है कि वैदिक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि एक यूनिवर्स में केवल एक ही सन है। तो प्रभु जी, ये जो स्टार्स हैं हम इसको कैसे देखें, फिर कैसे इंटरप्रेट करें इनको हम?
श्रीमद भागवतम में पंचम स्कंध में पढ़ेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन आता है। सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मांड में कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ पे है उसका डिस्क्रिप्शन बताया है। तो बाकी जो तारे हैं उनको नक्षत्र बोला जाता है, 28 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। ये ऑब्वियसली इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं क्योंकि हर ब्रह्मांड के चारों तरफ 8 परतें होती हैं, 8 लेयर्स होते हैं। उस लेयर के बाहर की चीज हमें नहीं दिखाई दे सकती है, तो जो भी आकाश में दिखाई दे रहा है वो इसी ब्रह्मांड के नक्षत्र हैं, परंतु वो सूर्य नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। कुछ कुछ स्वयं प्रकाशित नक्षत्र भी हैं परंतु सूर्य जो है वो केवल एक ही है। इस प्रकार से ब्रह्मांड को प्रकाश देना, क्योंकि अगर आप वैदिक मॉडल और साइंटिफिक मॉडल में देखेंगे तो बहुत बहुत अंतर दिखाई देगा। वैदिक मॉडल में हम पाते हैं कि सूर्य देवता चक्कर लगाते हैं, उनका रथ होता है, रथ के आगे 60,000 ऋषि मुनि होते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जबकि हम इसमें क्या देखते हैं कि सूर्य तो अपनी जगह पे हैं और बाकी नक्ष ग्रह चक्कर लगा रहे। तो बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे भागवत में आता है कि चंद्रमा सूरज से दूर है, जबकि मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, चंद्रमा तो 2,84,000 किलोमीटर है और सूरज 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि भागवत के आधार पर सूरज से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। तो बहुत सारी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो टॉपिक भी बहुत बड़ा है, अगर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कभी कर सकते हैं। 5वें स्कंद का टॉपिक है वो, पर पता नहीं कितने भक्त उसको समझ पाएंगे क्योंकि टेक्निकल टाइप का टॉपिक है।
प्रभु बट प्रभु जी फिर जो भागवतम से जो अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब कन्विंसिंग कैसे कन्विंस करें उसको, क्योंकि जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है जैसे हर हर जो स्टार्स है ये अपने प्रकाश से ही चमक रहे हैं एक्चुअली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनका अपना प्रकाश नहीं है, या कुछ का तो प्रकाश है अपना नक्षत्रों का, बाकी का नहीं है।
होगा कि जो भी स्टार्स हैं, जो भी प्लेनेट है, उस प्लेनेट का कोई ना कोई राजा है, कोई भी प्लेनेट इम्पर्सनल नहीं है। जैसे चंद्र ग्रह के राजा सोमदेव हैं, सूर्य के राजा सन गॉड हैं, तो जितने भी तारे हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसी ना किसी का एबोर्ड है वैदिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, और उस राजा की पर्सनल शक्ति के आधार पे उस प्लेनेट की शक्ति होती है। वहां का राजा कितना बुद्धिशाली है, जैसे धरती पे भी पहले एक ही राजा होता था, कलयुग में केवल अलग अलग कंट्रीज होते हैं, नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट होते थे जैसे युधिष्ठिर थे, परीक्षित थे, तो हर लोग का एक राजा होता है, उस राजा की पर्सनल स्ट्रेंथ के कारण उस लोग की शक्ति होती है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां का राजा कितना भक्त है, या कितना कितना असुर है या सुरा है, उसके आधार पे डिफाइन होता है।
And,
और उसको और कन्विंसिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 1-2 साल वेट करेंगे, मायापुर में जो टीओवी पे बन रहा है उसमें प्लेनेटेरियम बना रहे हैं वो पूरा, तो उस प्लेनेटेरियम में जो उन्होंने बनाया बनाएंगे उसका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बहुत अच्छा है। एक मेरे पास एक पुस्तक भी है, आपको अगर कहीं ऑनलाइन मिले तो खरीद सकते हैं, भागवत कॉस्मोलॉजी के नाम से, उसमें इसका बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, भागवत कॉस्मोलॉजी आप देखिएगा, शायद गोवर्धन इको विलेज की पुस्तक है वो।
प्रभु जी ये प्रभुपाद के उसमें बीबीटी में मिल जाएगी क्या, बुक ट्रस्ट में अपना?
नहीं बीबीटी की नहीं है ये, इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज जो है ना, परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक रिट्रीट सेंटर है।
यस 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 वी नो यस,
तो उसकी उसमें से वहां से ये बुक निकली है, भक्ति वेदांत विद्यापीठ की पुस्तक है, वो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, शायद अमेज़न पे होगा या कहीं पे होगा वो।
ओके,
भागवत कॉस्मोलॉजी नाम से है,
हाँ जी,
उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे बहुत सारे। उसको लिखा है पवनेश्वर प्रभु, चौपाटी के एक भक्त हैं पवनेश्वर प्रभु, उन्होंने लिखा है।
ओके ओके, पवनेश्वर। एक्चुअली हमारे एक डिवोटी अभी चौपाटी में ही है इस टाइम पे, टेंपल में ही है, तो वो आने वाले हैं अप्रैल में, तो उनसे मैं बोल दूंगा। यस,
ये भागवत कॉस्मोलॉजी मिल जाएगा।
हाँ। एंड प्रभु जी एक चीज और थी, आपने जो बताया ना उसके हिसाब से फिर ये ध्रुव तारा का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होता है। जो ध्रुव ध्रुव लोक है वो मतलब तारा, हम लोग तारे की तरह देखते हैं उसको, ऐसे स्टार नजर आते हैं, बट वो स्टार वो एक लोक है ध्रुव लोक, तो उसमें प्रभु जी जीवात्माएं भी जाती है क्या, कैसे कैसे होता है वो?
एक्चुअली ध्रुव लोक जो है वो वैकुंठ लोक के जैसे ही है, इस संसार में वैकुंठ लोक है वो, उसका विनाश नहीं होता कभी। जब ये संसार में प्रलय आती है तो ध्रुव लोक का विनाश नहीं होता है, क्योंकि वहां पे भगवान का एक अवतार निवास करते हैं और उसी अवतार की सेवा ध्रुव महाराज हमेशा करते हैं। वो भगवान का पर्सनल लोक था, ध्रुव के ऊपर कृपा करके भगवान ने वो लोक ध्रुव को दे दिया।
अच्छा,
ध्रुव के पहले वहां पे कोई और राजा नहीं था, पर भगवान ने उनको राजा बना दिया उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर।
तो प्रभु जी जैसे हमारी हम में से कुछ आत्माएं जीवात्माएं जो भगवान की सेवा करती हैं बट परफेक्शन परफेक्शनल नहीं है, जो गोलोक धाम तक नहीं जा पाती हैं, वो आत्माएं क्या यहाँ चली जाती हैं मतलब ध्रुव ध्रुव लोक में, या फिर ध्रुव महाराज अकेले रहते हैं वहां पे?
ध्रुव महाराज के लोक में भगवान के भक्त हैं क्योंकि वो वैकुंठ का ही हिस्सा है, तो ऐसा तो नहीं कि इम्परफेक्ट आत्माएं जाती हैं, शुद्ध भक्त भी वहां पे जाते हैं क्योंकि वो वैकुंठ के जैसे ही है, वैकुंठ के समान है। जैसे इस संसार में वृंदावन है और भगवान के संसार में वृंदावन है आध्यात्मिक संसार में, उसी तरह से तो जो ध्रुव लोक है उस और वैकुंठ है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वो भी वहां पे जाते हैं क्योंकि भगवान का रूप वहां पे है, भगवान की सेवाएं वहां पे होती हैं।
ओके, एंड प्रभु जी जो ध्रुव लोक है वो तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है ना, जो 1/4 मटेरियल वर्ल्ड है जो हमारा यूनिवर्स जैसे।
हाँ, इसी ब्रह्मांड के अंदर है वो, इसी यूनिवर्स के अंदर।
हाँ जी राइट।
ओके,
आई थिंक उसमें इम्पर्सनलिस्ट, उसको प्रपंच वैकुंठ भी बोलते हैं शायद, प्रपंच वैकुंठ।
प्रपंच वैकुंठ बोलते हैं वो, बोलते हैं वैकुंठ का, प्रपंच का मतलब होता है वैकुंठ के जैसा, वैकुंठ का कॉपी करते हैं उस तरह से बोला जाता है।
ओके ओके ओके, यस प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। यस
ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कब होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि इस बुक को कंप्लीट कर दें। कितने चैप्टर बचे हैं अभी? 5, 6, अच्छा 9 चैप्टर, 5 चैप्टर और बाकी है।
yes.
2 क्लासेस लगेगी मतलब। ओके,
मुझे एक प्रश्न और था मेरा, अगर टाइम है तो 2 मिनट का, ये इसी चैप्टर का है, आपने जो वर्ड यूज किया था उसी के ऊपर है। तो आपने प्रभु जी बोला था कि जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हम लोग भक्ति मार्ग पे हैं, तो स्पिरिचुअल उसमें 1+1=1, 1-1=1 प्रभुपाद ने जो यूज किया है, एंड वो अंडरस्टैंडेबल है प्रभु जी, कि भगवान की शक्ति में से भगवान कुछ शक्ति निकलती है तो फिर भी वो बराबर ही होती है, मतलब कम नहीं होती भगवान की शक्ति। बट आपने बोला कि मायावादी में ऐसा नहीं है, पर मायावादी में कैसा है प्रभु जी, हाउ दे थिंक एक्चुअली, आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि
मायावादी ऐसा
मायावादी
सोचते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, जैसे कोई कागज है, मान लो मेरे पास एक कागज है और इस कागज को मैं फाड़ रहा हूँ, तो एक समय आएगा जब ये कागज को पूरा फाड़ दूंगा, वो कागज नहीं बचेगा, केवल टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। तो मायावादी ऐसे ही बोलते हैं कि पहले तो आध्यात्मिक सत्य था, परंतु तो उसमें से इतनी सारी आत्माएं निकल गई कि वो सत्य खत्म हो गया, उसका आकार नहीं बचा। तो उनका ये
हाँ,
अंडरस्टैंडिंग है।
तो प्रभु जी अगर आकार नहीं बचा है तो फिर ये इसका मतलब कोई इम्पर्सनल गॉड नहीं बचा, मतलब फिर तो कोई, फिर हम किसको सरेंडर करेंगे अगर कोई बचा ही नहीं है, तो हम
नहीं, वो
सरेंडर
बोलते
किसको?
हैं एक निराकार है कुछ, उनको भी पता नहीं कि क्या है वो, परंतु कुछ तो निराकार है, वो ब्रह्म जैसा है, उसको उसका आकार चला गया क्योंकि उसमें से हम लोग निकल आए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपका बोलने का मतलब कि अगर अगर पिता में से बेटा निकल आया तो पिता को मर जाना चाहिए। प्रभुपाद जी उनके लिए बोलते थे
यस
मायावादी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर तो क्या होगा कि अगर बेटे का जन्म हो गया तो पिता मर जाएगा, क्योंकि
यस
बेटा तो पिता में से ही निकला है, तो ये
यस
बोगस अंडरस्टैंडिंग है।
यस तो जैसे प्रभु जी वो यूनिफाइड कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, यूनिफाइड कॉन्शियसनेस, उसमें से फिर अगर कॉन्शियसनेस निकल जाएंगी बहुत सारी तो वो कुछ बचेगा नहीं, मतलब ऐसा कुछ मानते हैं?
से वो लोग मानते हैं। हाँ
ओके 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 ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।